मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की 10 लक्षण महापर्व की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के अनुष्ठान में निरंतर शामिल होकर विचार कर रहे हैं कि जो जीवन शेष रहा है उसे हम किस तरह और बेहतर ढंग से जिए। हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें शामिल हो गई हैं जिनको हम खुद भी नहीं चाहते हैं, पर हमारे अपने पुराने अज्ञान की वजह से संस्कारों में वो चीज़ें इतनी जज्ब हो गई हैं कि हम उन्हें चाह करके भी अपने से अलग नहीं कर पाते हैं। और उन जो नहीं चाहने योग्य चीज़ें हैं जिन्हें हम दूसरे में भी नहीं चाहते हैं और अपने स्वयं में भी नहीं चाहते, ऐसी नहीं चाहने योग्य चीज़ें अगर अपन देखें तो सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुस्सा करते हुए अच्छा नहीं लगता, कोई भी व्यक्ति अहंकार करते हुए अच्छा नहीं लगता, कोई भी व्यक्ति छल कपट करते हुए अच्छा नहीं लगता और लोभ करते हुए अच्छा नहीं लगता। इस तरह यदि हम गौर से देखें तो ये सब चीज़ें ना हमें दूसरे में अच्छी लगती हैं ना अपने भीतर अच्छी लगती। तब हमने ये सोचा है कि हम सब दूसरे के भीतर भी अगर ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी तो उनको हटाने का प्रयत्न करेंगे और अपने भीतर भी ये चीज़ें जब जब आ जाएंगी तो इनको हम अच्छा तो नहीं मानेंगे पर धीरे धीरे इनको हटाने का प्रयास करेंगे। कल हमने बहुत एप्लीकेबल जो चीज़ हो सकती थी अपने क्रोध को हटाने की और अपने भीतर उस क्षमा भाव को हमेशा बनाए रखने की, वो हमने कल समझी थी। वैसे हम देखें कि जितने भी वृक्ष हैं, पृथ्वी है, ये सब भले ही वे अज्ञानी हैं लेकिन अगर हम देखें तो वे बड़ी क्षमा भाव धारण करते हैं। भले ही उनकी क्षमा मजबूरी वाली क्षमा क्यों ना हो, हम पृथ्वी को कितना ही रौंदते कुचलते हैं, उसके ऊपर मलमूत्र विसर्जित करते हैं, उसके बाद भी उसका कितना पेशेंस है कि वो सब सहन कर लेती है। वृक्षों को हम कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं, मार पीट करते हैं, उन्हें तोड़ फोड़ के रख देते हैं, इसके बावजूद भी वे चुप रहे आते हैं। हालांकि ये उनकी मजबूरी है, पर क्या हम उनसे कोई संदेश नहीं ले सकते हैं? हम उनसे एक ही संदेश लेना चाहें तो ले सकते हैं कि हम जितनी अधिक सहनशीलता सहिष्णुता अपने भीतर बढ़ाएंगे उतना ही हमारे अंदर क्षमता बढ़ेगी और क्षमतावान व्यक्ति को ही क्षमा भाव शोभा देता है। हमने कल अपनी सहनशीलता सहिष्णुता कैसे बढ़ाएं, और जब ऐसे कमजोर मौके आ जाएं हमारे जीवन में कि हम क्रोध में खिसक जाएं, गिर जाएं, तो हम कैसे अपने को संभाल लें। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। मृदोर्भावो मार्दवम, हमारे भीतर जो मृदुता है वही मार्दव धर्म है। जिन क्षणों में हम अपने भीतर कोमलता का अनुभव करते हैं, मृदुता का अनुभव करते हैं, वे क्षण हमारे मार्दव धर्म के हैं। हमारे अंदर अहम करोति इति अहंकारः, ऐसा जब भाव नहीं होता, मैं करता हूँ, ये जो भाव है वो ही अहंकार का भाव है, या कि मैं कुछ हूँ इस तरह का जो भाव है, मैं हूँ ये तो अपनी एग्जिस्टेंस का भाव है, ये तो हर एक को फील होता है कि मैं हूँ, लेकिन मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, ये जो भाव हमारे भीतर हमें घेर लेता है, तब उसको कहते हैं अहंकार। दो तरह से हम जीवन जी सकते हैं, एक तो अपने आप को इस संसार का कर्ता धर्ता और सब कुछ मान करके, ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह का जीवन जीते हैं कि ऐसा फील करते हैं, हम भी कई कई बार ऐसा फील करते हैं कि जैसे हम ही अपने परिवार को चलाते हैं, हम ही अपने समाज को चला रहे हैं, हम ही अपने देश को चला रहे हैं, यहाँ तक कि ऐसा लगने लगता है जैसे कि सारी पृथ्वी सारा तीनों लोक का आधिपत्य स्वामित्व जैसे हमको मिल गया है, किसी ने नहीं भी दिया फिर भी हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है। ये जो फीलिंग है वो ही हमारा अपना अहंकार है, और जिसके चलते हमारी मृदुता और कोमलता चली जाती है, हम कठोर हो जाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा कठोर हो गया था, अभी थोड़ी देर पहले, नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा मन में भाव आ गया, अब उसको कमजोरी माना जाएगा, मेरे भीतर हो या किसी और के भीतर हो, कमजोरी थी। उस बात को दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता था, मैं बाद में सोचता रहा कि उसको ऐसे ना कह के दूसरे ढंग से कहना था कि आज हम अभी तक जैसी पूजा करते आ रहे थे वैसी ना करके थोड़ी और हटके करते हैं, देखें अगर उसमें मजा आएगा तो वैसी करेंगे, नहीं आएगा तो जैसी कर रहे थे वैसी करेंगे, ऐसा भी कह सकते थे, ये कमी मानी जाएगी, है ना। अब उस चूक को अपन को सुधारना है, ये सामने एक उदाहरण है, अपन को रोज ना रोज एक चीज मिल जाती है, अपन सुधार सकते, वहीं के वहीं उसको संभाल सकते हैं, और आगे जब ऐसा अवसर आएगा तो हम नहीं चूकेंगे, ऐसी अपने को ऑटो सजेशन, ऐसी सलाह दे सकते हैं। ऐसे ही कदम कदम पर अगर हम थोड़े से सावधान हो जाएं अपने भावनाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति, तो हम अपने जीवन के साथ साथ अपने पूरे परिवेश को भी संभाल सकते हैं। तो ऐसी जो हमारे भीतर की मृदुता या कोमलता है, वो तो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है, और जब हम मैं करता हूं या कि मैं कुछ हूं ऐसे भाव से भर जाते हैं, तो थोड़ी सी कठोरता अपने मन में जो आती है वो हमें भी कष्टकारी होती है और दूसरे को भी कष्टकारी होती है। ये बात यदि हमारे मन में निरंतर बनी रहे, तो हमारे भीतर ये जो आज हम मार्दव धर्म के बारे में विचार कर रहे हैं, वो विचार करना सार्थक होगा। क्या होता है अहंकार के आने से, और क्या होता है हमारे अंदर मृदुता और कोमलता के आने से, दोनों चीजों को अपन थोड़ा सा समझ लें। जब हम किसी दूसरे से सम्मान की आकांक्षा रखते हैं, योग्यता नहीं होने पर भी, तब एक छटपटाहट हमारे भीतर होती है, नहीं मिलने पर और मिलने पर भी, दोनों स्थितियों में, नहीं मिलने पर तो छटपटाहट होती ही है, और अगर मिल जाता है तो मिलने पर भी ऐसा लगता है जैसे कि कम मिला, कभी भी तृप्ति नहीं होती। लिखा तो यह है कि माने न तृप्ति न तु भोजने न, व्यक्ति को भोजन से तृप्ति उतनी नहीं मिलती जितनी मान सम्मान से तृप्ति मिलती है। लेकिन आचार्य भगवंत इसके भी आगे कहते हैं कि तृप्ति मान सम्मान से नहीं मिलती, मान सम्मान के साथ मिलने पर जो हमारे भीतर कृतज्ञता और विनय आती है उससे तृप्ति मिलती है। इसलिए जहां लिखा है कि मानेन तृप्ति न तो भोजनेन, वहां उसका अर्थ है कि जब हम दूसरे से सम्मान पाते हैं तो हमारे भीतर क्या आनी चाहिए, विनय और अधिक आनी चाहिए, नम्रता और अधिक आनी चाहिए, झुकने का मन हो जाना चाहिए, तब फिर वो सम्मान भी बुरा नहीं है। सम्मान मिलना बुरा नहीं है, सम्मान की आकांक्षा होना बुरा है। मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊं और अपनी योग्यता से विशिष्टता प्राप्त करूं, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने को चार लोगों के बीच में विशिष्ट मानूं, ये बात अच्छी नहीं है। इतना ही अपने को फर्क समझना है। विशिष्ट होना बुरा नहीं है, विशिष्टता की आकांक्षा या विशिष्ट कहलाने का जो भाव है वो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न करता है। और इतना ही नहीं, कैसे, कसौटी क्या है, कैसे पहचानेंगे कि अब हमारे भीतर अहंकार आ गया है? तो जब भी दूसरे का तिरस्कार करने का भाव, दूसरे के गुणों को सहन न करने का भाव, दूसरे से ईर्ष्या का भाव अपने भीतर दिखने लगे, तो समझना कि ये सारी वैरायटी उसी अहंकार की है, उसी मान कषाय की है। इतना भर अपने को ध्यान में रखना है। क्या होता है कि हम जरा सी चीज में और अपना तिरस्कार महसूस करने लगते, या कि जैसे ही दूसरे के गुण बढ़ते देखते हैं तो अपने को हीन समझने लगते हैं, और ये जो हीनता की भावना हमारे भीतर आती है वो हमारे अंदर अहंकार को जन्म देती है। बड़ा साइकोलॉजिकल है ये। लगता ये है कि सुपियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नहीं, इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ईगो डेवलप होता है। जो व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, जो व्यक्ति योग्य है, उसे अपनी योग्यता से अतिरिक्त सम्मान की आकांक्षा ही नहीं है, उसकी योग्यता ही उसका सम्मान है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता नहीं है, उसको उपाय करना पड़ता है कि उसे सम्मान मिले, और यही कहलाता है अहंकार, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम देखें, हमने क्या सीखा कि हम अपने भीतर की योग्यता अगर बढ़ाते जाएं, अपने भीतर की योग्यता को बढ़ते हुए देखें और अपने आप में हम स्वयं विशिष्ट होना शुरू हो जाएं, तो बाहर बाहर में हमें उस योग्यता के सम्मान पाने की या कि दूसरे के तिरस्कार करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होगी। दूसरे के गुणों को हम आसानी से सहन कर पाएंगे। या तो हम अपने आप को इस संसार का कर्ता मान के, स्वामी मान के जीना चाहते हैं तो वैसा जी सकते हैं, और या कि इस सृष्टि का एक अंग मैं भी हूँ ऐसी भावना से भी जी सकते हैं, समुद्र में पड़ी हुई बूंद की तरह, और हम उसमें मिक्सअप होके जी सकते हैं, और समुद्र के बीच एक आइसलैंड की तरह अपनी एग्जिस्टेंस कायम रखने के लिए समुद्र में ना मिल करके उससे अलग थलग भी जीना चाहें तो जी सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे। हम अपनी योग्यता बढ़ाना पसंद करेंगे और दूसरे के अंदर बढ़ती हुई योग्यता से प्रसन्न होना पसंद करेंगे, या कि हम अपनी योग्यता को बढ़ाए बिना सिर्फ दूसरे से योग्य कहलाने का भाव रखेंगे और जब भी दूसरे के भीतर गुण देखेंगे तो कसमसाहट अपने भीतर महसूस करेंगे। अब ये हमारा चुनाव है कि हमें दो में से क्या चुन। आनंद तो पहले वाले में ही है कि हम निरंतर अपनी योग्यता बढ़ाते चले जाएं और सम्मान पाते चले जाएं। योग्यता ही सबसे बड़ा सम्मान है, और जैसे ही दूसरे के अंदर भी उस योग्यता को देखें, उन गुणों को देखें, तो हर्षित हो जाएं। अभी हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि कोई हमारा सम्मान करे ना करे, हमें इसकी ज्यादा चिंता नहीं, हमें चिंता ये हो जाती कि हमारे सामने दूसरे का सम्मान ना हो जाए। ये बड़ी मुश्किल अपने भीतर है देखना। हमने कई बार देखा इस चीज को, अपन सब भी देखते हैं, अपन विचार कर रहे हैं कि बैठे हैं सब, और किसी एक व्यक्ति को अगर प्रायोरिटी मिल जाए, उसको सम्मान मिल जाए, तो कैसा लगता? क्या हम उस समय उसके सम्मान में प्रसन्नता महसूस कर पाते हैं, उसके सम्मान में हम गदगद हो जाते हैं? नहीं हो पाते हैं। हमें उस समय लगने लगता है कि इस सब की क्या ज़रूरत थी, ऐसा लगने लगता। और अगर उस जगह अपने को खड़ा करें तो ज़रूरत थी, इतना ही है। अगर उसकी जगह पर हम हों तो सम्मान मिलना चाहिए, ज़रूरत है। लेकिन कोई और दूसरा, दूसरे का हो रहा सम्मान लेकिन हमें लगता है हो रहा है जैसे हमारा अपमान, बताओ। दूसरे के सम्मान में ये जो अपमान महसूस करने का भाव है, उसी का नाम तो अहंकार है। और दूसरे के सम्मान में, गुणों के सम्मान में अगर हम आह्लाद महसूस करते हैं, तो मानिएगा कि अब हमारे भीतर विनय, कोमलता, मृदुता, ये जो हमारा अपना स्वाभाविक धर्म है, वो आना शुरू हो गया। ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है, इसको अपन ठीक करने की कोशिश करें कि जब जब भी किसी के गुण देखें तो हमारे भीतर हर्ष होना शुरू हो। कभी किसी के गुणों की प्रशंसा हम सुने तो हमें हर्ष महसूस हो, इसके बाद ही हम अपने गुण और दूसरे के गुण बढ़ा पाएंगे। अपने गुण तभी बढ़ेंगे जब हम दूसरे के गुणों को सहन कर सकेंगे, उसके गुणों की प्रशंसा में शामिल हो सकेंगे। हमारे अंदर इतनी कोमलता या मृदुता आनी चाहिए। हम लोगों ने अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना जटिल और इतना कठोर बना लिया है कि हमें ये चीज़ महसूस ही नहीं होती। और इतना ही नहीं, हम अपने इस अहम को ऊंचा उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर भी डिपेंड हो गए हैं। मेरेपन का जो भाव है वो भी इस मैं की वजह से ही आता है। आई एम समथिंग, आई एम, इतना कहने में कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ हूँ ये जो भाव है वो कैसे डेवलप होता है? अब जब मैं कुछ हूँ तो मेरे पास बहुत कुछ होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे करके पूरा संसार का प्रपंच, जहाँ हमने ये मान लिया कि मैं कुछ हूँ, वहाँ पर सारा प्रपंच फैलना शुरू होता। अगर सपोज करें मैं अपने को मान लूँ कि मैं एक साहब हूँ, ठीक है, अब साहब हूं तो साहब के जितने तौर तरीके होना चाहिए वो सब मुझ में होना चाहिए। एक साहब को कैसे रहना चाहिए, अपने नौकर को हिराकत की नजर से देखना चाहिए, ये साहब का लक्षण है। नहीं, ऐसा गलत तो नहीं कह रहा हूं, ऐसा आ जाता है भाव, मैं साहब हूं तो मेरे हिसाब से मेरे मातहत जो लोग हैं उनको चलना चाहिए। कितनी मुश्किलें अपने जीवन में आ जाती, मैं साहब हूं तो मेरे घर में अब जो है इतनी इतनी चीजें तो होनी चाहिए, नहीं तो लोग आएंगे तो वो कहेंगे अरे हम साहब क्या गए थे, उनके यहाँ तो गीजर ही नहीं है, उनके यहाँ पर तो हीटर ही नहीं, कूलर ही नहीं है, उनके यहाँ पर टेलीविजन, उनके यहाँ कलर्ड नहीं है, उनके यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट। अब ले मेरा मैं जो है इन चीजों से बड़ा हो जाता है, और हम सब इसी कोशिश में लगे हैं। अगर हम चीज़ों में अपनी योग्यता मानते हैं तो मानिए अभी हमारे अंदर मृदुता और कोमलता धर्म नहीं आया है, हमारे अंदर अभी अहंकार है। मेरे मैं को संभालने के लिए मैं अपने इन चीज़ों पर डिपेंड होता हूं और इन चीज़ों से अपने अहंकार का पोषण करता हूं, तो मानिएगा कि अभी हमारे अंदर मृदुता नहीं आई। चीजें होना बुरी चीज नहीं है, चीजों का उपयोग करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन चीजों के माध्यम से अपने आप को बड़ा मानना, बड़प्पन अपना मानना, ये अपनी एक कमजोरी है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अपन करते हैं। जब नई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो गाड़ी का सुख तब मिलता है जब चार लोग देखें, नहीं तो नहीं मिलता। गाड़ी चलाने का आनंद तो आना चाहिए, वो नहीं आता। नहीं, गाड़ी कोई देख लेवे तब आनंद आता है, और कोई पूछ लेवे तब तो क्या कहना कि ये मॉडल कब लिया आपने, लेटेस्ट लग रहा है एकदम, तब ऐसा लगता है कि बस जैसे सार्थक हो गया लेना, नहीं तो उसके, जबकि आपने काम के लिए ली थी कि इधर से उधर चले जाएंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे, इसके लिए बनी थी वो,
इसके लिए थोड़ी ना बनी थी कि चार लोगों के बीच जाकर के और उसको दिखाएं कि मेरे पास ये है। मजा ये है, मान का मजा ये है कि उससे जो चीज प्राप्त होती उसमें सुख नहीं मिलता, उसे सुख तो उसके प्रदर्शन में मिलता है कि देखो मेरे पास है वो तुम्हारे पास है ही तक नहीं। अब सारा सारा मजा उसमें है। ये चीज अपने भीतर झांक करके देखनी पड़ेगी। जब भी अपन कोई चीज हासिल करें अपने जीवन में तब उस चीज का आनंद लें, इसमें आनंद ना माने कि वो चीज दूसरे लोग देखें। मेरे गुण जब तक दूसरे के द्वारा सम्मानित ना होंगे तब तक मानो कि मेरे गुण है ही नहीं, मेरे गुण दूसरे के सम्मान पाने के मोहताज हो गए, तब तो फिर मेरे अंदर गुणवत्ता बढ़ ही नहीं पाएगी और ना ही मैं दूसरे के भीतर के गुण देख करके उनसे कोई प्रेरणा ले पाऊंगा, उनसे कोई अपने जीवन में अच्छा मार्ग उनके द्वारा ले पाऊंगा। ये दोनों चीजें हमारे भीतर बहुत तेजी से इन दिनों बढ़ रही। वैसे भी आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि लोभ कषाय के साथ देव पैदा होते हैं और मायाचारी के साथ तिरंज पैदा होते हैं, क्रोध कषाय की तीव्रता के साथ नारकी पैदा होते हैं और मान कषाय के साथ मनुष्य पैदा होता है। आते ही साथ और अगर छोटे से बेटे की तरफ ध्यान ना दें तो चीख चिल्ला के सारे घर को अपने आसपास खड़ा कर लेता कि सब यहाँ खड़े हो जाओ एक लाइन से, क्या समझते मुझे, मैं दिख रहा हूँ छोटा सा लेकिन सबको सिर पे उठा सकता हूँ सारे घर को चीख चिल्ला के। ये मान कषाय का एक रूप है, लगता है वो किसी अपनी वजह से चीख रहा है, ना है? वो मान कषाय की वजह से जब हम उसको इग्नोर करते हैं, इतने छोटे से बच्चे को आप इग्नोर कर दीजिएगा, उसकी उपेक्षा कर दीजिएगा, उसका ईगो हर्ट करता है। ये नहीं समझना कि वो बहुत छोटा अभी समझता नहीं है, सब समझता, बहुत पुराना आसामी है, संसार देखा है उसने, घूम घाम के आ रहा है वो, बहुत है वो छोटा सा दिख रहा है। हम सब इसी तरह जन्म लेते हैं और हमारे अपने मान कषाय के पोषण के लिए हम निरंतर प्रयत्न करते हैं। कोई बात नहीं, ये बुरी चीज नहीं, कौन नहीं चाहता सम्मान, लेकिन भैया काम इतना ही सा करना है कि सम्मान जिस चीज में मिलता है वो चीज मेरे पास हो तब ना। सम्मान तो गुणवत्ता का और श्रेष्ठता का होता है, मैं अपने को गुणवान और श्रेष्ठ बना लूं तो मेरा सम्मान हो गया, अपने आप ही हो गया, कोई करे या ना करे, मेरा सम्मान किसी और का मोहताज ना हो। बस इतनी बात ध्यान में रही आए तो एक लाइफ स्टाइल हमारी ये हो सकती है कि हम अपनी योग्यता और श्रेष्ठता बढ़ाएं, हम असाधारण कहलाने की चेष्टा ना करें बल्कि साधारण रह करके उस असाधारणता को हासिल कर ले। जो जितना साधारण है वो मानिए उतना ही असाधारण है और जो जितना असाधारण बनने की कोशिश करता है मानिए वो उतना ही साधारण है। अपन रोजमर्रा के जीवन में जितना कोई मान चाहता है मानिए उतना ही उसका अपमान निरंतर होता है, जितनी हम संसार से अपेक्षा रखते हैं मानिएगा उतनी ही उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। ये जीवन के अनुभव है। रोज अपन अपने बच्चों से सम्मान की आकांक्षा रखते हैं निरंतर अपमान मिलता, अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं वे हमारी उपेक्षा करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आज मृदुता का दिन है, आज कोमलता का दिन है, आज हम इस बात पर विचार करें कि ये चीजें जो हमारे भीतर हैं, जो हमारे अहम भाव का पोषण करती हैं और हमारी रिसेप्टिविटी को कम करती हैं। अहंकार हमारी ग्राहकता को नष्ट करता है, हमारी योग्यता नहीं होने पर भी योग्यता का भ्रम पैदा करता है, ये अहंकार का काम है। योग नहीं भी है, श्रेष्ठ नहीं भी है, पर योग्यता और श्रेष्ठता का भ्रम पैदा हो जाता है जब चार लोगों से हमें सम्मान मिलने लगता है। योग नहीं होने पर सम्मान मिलना बहुत अच्छी चीज है लेकिन बहुत खतरनाक चीज है। बिना योग्यता के अगर किसी को अगर नीचे गिराना हो, पतित करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है उसकी खूब जय जयकार करो, माला पहनाओ और प्रशंसा ही प्रशंसा करो, फूल फाल करके और भस्ट हो जाएगा वो। हम ऐसे ही होगा, वो तो ज्यादा हवा भर देंगे उसमें गुब्बारे में तो फट जाता वो एकदम। ये बहुत बहुत मुश्किल सी चीज है इसको समझने के लिए अहंकार का पोषण हम स्वयं अपना भी करते हैं और दूसरे का भी करते हैं, और योग्यता और श्रेष्ठता हमारे से निल होती चली जाती है, और दूसरी चीज हमारी रिसेप्टिविटी कम होती चली जाती, ग्राहकता, हम धीरे धीरे एग्रेसिव होते चले जाते हैं। जितना हम मान सम्मान पाने की आकांक्षा रखते हैं उतने हम आक्रामक होते जाते हैं, और जितने हम विनम्र होते हैं उतने हम ग्राहक या कि रिसेप्टिव होते चले जाते हैं। हमारे अंदर मानिएगा, एक उदाहरण से समझ लीजिएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। आपने मुझसे दो बातें कहीं और दोनों बातें अच्छी थीं, लेकिन मैंने सोचा कि वाह इनकी दोनों बातें अच्छी हो जाएंगी तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, तो मैंने आपकी दोनों बातें रिजेक्ट कर दी। अच्छी भी थी फिर भी, अब क्या हुआ इससे, मेरे पास भी दो अच्छी बातें आ सकती थी, नहीं आई। और अगर मैं थोड़ा विनम्र होकर के उन दोनों बातों को स्वीकार कर लेता और कहता कि मेरे पास भी दो बातें अच्छी हैं आप ले लीजिएगा, तो एक डायलॉग क्रिएट होता और दो बातें दूसरे से मिलती और दो अपने पास पहले थी सो चार हो जाती, और दूसरे के पास भी दो थी उसके पास भी चार हो जाती। इस तरह एक दूसरे के गुणों को हम बढ़ाने में निमित्त बन सकते थे अगर थोड़े से विनयवान होते, और हम अगर थोड़े से कठोर हो जाते हैं तो हमारी अपनी रिसेप्टिविटी भी खत्म होती और दूसरे से जो प्राप्त होना था उससे भी हम वंचित हो जाते हैं। हम इस संसार में कैसे जीते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है। एक साधु जी को राजा ने अपने यहां पर बुलाया। अब साधु जी को राजा बुलाएगा तो कोई ना कोई इंटेंशन होगा उसका, वो चाहता था कि ये साधु जी बिल्कुल फक्कड़ हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, जरा एक आध बार हमारे महल में आके तो देखें कि किस तरह मैं जीता हूं, इनने कभी देखा तक नहीं होगा। ऐसा आता है कई बार अपने मन में भाव, नहीं आता अपने घर में दूसरे को बुलाने के पीछे कौन सा भाव रहता, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, कभी कभी रहता, रह सकता है। अपनी बहुत सारी चीजें जब अपन दूसरे को दिखाते हैं तब कैसा भाव रहता है, कभी कभी ऐसा भाव नहीं आ जाता कि दूसरे से इन चीजों को दिखाकर मैं प्रशंसा हासिल करूं, ऐसा भाव आ जाता। और इतने ही नहीं, कई बार जब अपने को वो चीज प्रशंसा नहीं मिलती है तब अपन व्यथित होकर के और कैसे उपाय करते हैं, बहुत प्रकार के उपाय करते हैं। वो दूसरा उदाहरण और ध्यान में आ गया, ये वाला गायब हो गया। अब वो पहले वाला सुनाऊं कि दूसरा वाला सुनाऊं? दूसरा वाला पहले सुनाता हूं, पहले वाला याद रह जाएगा, वो जो साधु जी वाला था उसको बीच में रोक देते हैं, देखना मजा। अब दूसरा वाला आ गया उसके बीच में, तो क्या हुआ, एक अम्मा जी थी और उन्होंने एक बढ़िया सा पान खाने का, वो होता ना मचला, पान रखते हैं जिसमें, हाँ पानदान, वो उसका बनता, वो लकड़ी और बांस का बढ़िया से सजा करके, वो चांदी वांदी वाला नहीं, वो उस पे बड़ी नक्काशी और लखनवी जो लजाकत है वो सब उसमें। अब उन्हें खरीद लिया, उनको पान खाने का बहुत शौक था, बूढ़ी अम्मा जी थी, गई वो लोगों के घर और पान उसमें से निकाल के उनने खाया, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान ही नहीं दिया तो बहुत मुश्किल, अपने पास है और कोई ने देखा ही तक नहीं, उसकी प्रशंसा तक नहीं करी। अब क्या हुआ, दो तीन दिन तो उनने बर्दाश्त किया कि कोई नहीं देख रहा और कोई पूछ तक नहीं रहा। अब एक दिन जो है हल्ला मचा, बूढ़ी अम्मा ने बाहर ला के जाके कहा कि आग लग गई, आग लग गई, बचाओ बचाओ। तो सब लोग उनके घर में आए, देखा कि सचमुच कुछ थोड़े से कप जी को पास में ही एक समुद्र था उस महल के, कहानी में ऐसा सब रहता है एकदम, आप क्या सोच रहे थे उसमें रहना ही चाहिए, नहीं तो कहानी कैसे बनेगी। तो वो महल था और उसके महल के बाजू में समुद्र, और वहां ले गए बाबा जी को और कहा कि बाबा जी देखते हैं ना वो जो जहाजे हैं, वो जहाजे सब मेरी है, और उन जहाजों में जानते हैं क्या है, हीरे जवाहरात और बहुत बेशकीमती चीजों का मैं व्यापार करता हूं। ऐसे हाथ लगा करके बाबा जी ने दूर दूर तक देखा, राजा बहुत खुश कि वाह देख रहे हैं आप कितनी अनेकों जहाजें जा रही हैं, वो सब अपनी हैं बाबा जी। बाबा जी ने बहुत गौर से देखा, क्या देख रहे हैं आप, मुझे तो दो ही दिखाई पड़ रहे हैं। अरे आपकी आंख का इलाज कराओ, कहो तो चश्मा बनवा दूं, कितनी सारी जहाजें हैं। उन्होंने कहा नहीं, दो ही प्रकार की जहाजें दिख रही हैं। क्या मतलब, हैं तो बहुत और आप कह रहे हैं दो, दो ही जहाजें हैं, नेम और फेम। मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, बस दो ही प्रकार की जहाजें हैं, ये सब उसी के लिए हैं। चाहे सैकड़ों जहाजें हों, चाहे तुम्हारा बहुत बड़ा महल हो, सिर्फ दो ही चीजों के लिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग माने, बस दो ही जहाजें। 24 घंटे घूमती रहती हैं अपने जीवन में भी यही दो ही जहाजें, यहां से वहां। अब इस चीज को अपने भीतर हम झांक करके देखें कि कहीं ऐसा भाव हमारे सबके भीतर भी तो नहीं है। अगर है तो उसे हम निकालने का प्रयत्न करें। हम लोग अहंकार की जगह पर थोड़ा सा गौरव करना सीख लें तो और आसानी रहेगी। जैसे कि हमारा कुल बहुत अच्छा है, हम ऐसे कुल में पैदा हुए जहाँ रत्नत्रय की परंपरा है, धर्म के साधन हैं, तो इस बात का हम अहंकार करना चाहें तो कर सकते हैं और इसका गौरव करना चाहें तो गौरव कर सकते हैं। इतना ही आराम से कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी जाति बहुत ऊंची है, हम दूसरे का तिरस्कार ना करें कि तुम्हारी जाति नीची है, हमारी ऊंची है, इस बात का गौरव करें और भावना भाएं कि हमको ऐसा ही कुल, ऐसी ही जाति जिसमें कि धर्म ध्यान होता रहे, हमेशा मिलती रहे, इसमें क्या दिक्कत है। जैसे कि हमारा बहुत सुंदर हमें रूप मिला हो तो हम दूसरे की कुरूपता का तिरस्कार ना करें और अपने उस सुंदर रूप का अहंकार ना करें, बल्कि ये विचार करें कि मैंने कोई पहले अच्छा कर्म किया होगा जिससे कि मुझे सुंदर रूप मिला है, मुझे ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, और दूसरे को भी प्रेरणा दें कि आपको भी अच्छे कर्म करना चाहिए। ये तो बहुत बाहरी रूप है, आप अपने को सुंदर भीतर से बना लेंगे। एयत निच्छय गदो समो सवत्त सुंदरो लोए, बंद कहा येयत्ते विषम वादनी होदी। यहां पर जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर ले वही तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं, और बाकी तो जितने भी संयोग हमें प्राप्त हुए हैं वे सब विषमवाद कराने वाले हैं। ये बाहर का रूप जो है वो भला और बुरा मेरे अपने अंतरंग के परिणामों की वजह से होता है और कोई इसमें कारण नहीं। मैं अच्छे परिणाम रखूं तो मेरा रूप कुरूप भी हो तब भी सुंदर ही मालूम पड़ेगा, और किसी का सुंदर रूप भी हो और परिणाम खोटे हों तो उसका वो रूप भी व्यर्थ है। ऐसा विचार करके अपने उस रूप का अभिमान न करके हम गौरव कर सकते। हमारे पास अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान से अपने जीवन में लाभ लेकर के और दूसरे को भी उस ज्ञान को देकर के अत्यंत विनय पूर्वक और अपने जीवन को जिया जा सकता है, और या फिर अपने ज्ञान से दूसरे को अज्ञानी साबित किया जा सकता है। वर्तमान में अपन को थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो सोचते हैं अरे इनको क्या ज्ञान है, ये क्या जाने, नहीं मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ऐसा भाव ना आ करके मैं भी जानता हूँ और इस जानने से दूसरे को मेरे से क्या लाभ मिल सकता है, मेरे जीवन को क्या लाभ मिल सकता है, इतना विचार करें तो ऐसा भी कर सकते हैं। हम ऐश्वर्यवान हैं, धनवान हैं अगर, तो हम निरंतर इस बात का गौरव महसूस करें अहंकार की जगह, क्योंकि ये सब चीजें अपने रोजमर्रा के देखने में आती हैं। कोई व्यक्ति सुंदर है तो क्या करे वो, कोई व्यक्ति के पास धन धन पैसा है तो क्या करे वो, फेंक के आ जाए क्या, नहीं, बस सिर्फ इतना ही कि उस धन पैसे का मैं सदुपयोग करूं, उसका अहंकार ना करूं, और ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, इससे पहले मैं अपने जीवन को ऊंचा उठा लूं, इसके माध्यम से मेरा पतन ना हो, इस धन पैसे के माध्यम से, इतना ही। कहीं ऐसा ना हो कि इस धन पैसे से मैं अपने परिणामों को बिगाड़ करके अपना अहित कर लूं, इतना ही अगर ध्यान रहे तो वो ऐश्वर्य भी हमारे लिए ऊंचा उठा सकता, और सबसे बड़ा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टय का है, वो प्राप्त करना है, उसी में गौरव है, उच्च कुल तो तीर्थंकरों का है, ऊंची जाति तो तीर्थंकरों की है। अगर ऐसा हम गौरव करना चाहें कि मैं तो उस कुल का और उस जाति का हूं जिसमें कि बड़े बड़े तीर्थंकर हुए हैं, तो ऐसा गौरव करने में कोई हर्जा नहीं। मैं तो उस केवल ज्ञान को कि सामर्थ्य को अपने भीतर लिए बैठा हूं, ये तो बहुत छोटा सा शैवोपशम ज्ञान है। मेरा तो केवल ज्ञान स्वभाव है, अगर उस ज्ञान को ऐसे कर ले तो हमारे जीवन में ये सारी चीजें आसानी से हम परिवर्तित कर सकते हैं। आखिरी में इतनी ही बात समझनी है कि अपने जीवन में इस अहंकार को धीरे धीरे घटाना है और विनय को धीरे धीरे लाना है। विनय आती कैसे है भैया? बहुत आसान तरीका है, धर्म और धर्मात्मा का सम्मान और प्रशंसा करना शुरू कर दे। दिन भर में जितने अवसर मिले उसमें दूसरे के गुणों की प्रशंसा शुरू कर दे, मन ही मन करना, उससे उसके सामने नहीं करना, नहीं तो वो गड़बड़ा जाएगा, उसका गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, मन ही मन, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है, देखो कितने बढ़िया गुण हैं, अपने मन में ही विचार कर रहे हैं, दुनिया भर की और मिथ्या बातें तो नहीं आएंगी, कम से कम इतना ही। जहां जहां गुण दिखाई पड़ते हैं उन सब की अपने भीतर प्रशंसा शुरू कर दें। दूसरे नंबर, भगवान के गुणगान करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी ऐसे ही गुण आना शुरू हो जाएं। विनयवान होने के लिए या अहंकार से बचने के लिए सबसे अच्छी है भगवान की प्रार्थना। और तीसरी चीज, जिंदगी भर में जितने उपकार दूसरों ने किए हैं दिन भर में उनको एक बार जरूर रिकॉल करना, किस किस ने मेरे, अगर जिंदगी भर के नहीं तो कम से कम दिन भर के ही सही, चलो आज किसने मेरे ऊपर क्या उपकार करा, आज देखो ये बाजोटा मेरे लिए व्यवस्थित लगा दिया, ये पाटा लगा दिया, तभी तो मैं यहाँ आकर के धर्म ध्यान कर सका, ये ठीक चल रहा है, ये जिन्होंने पेंडाल लगाया, अरे वाह, इस सब मेरे लिए धर्म ध्यान में सहयोगी बना, इतना उपकार, ऐसा विचार करने पर कृतज्ञता आ जाएगी। ये अपने अहंकार को हटाने, अपने जीवन जीने में कितने लोगों का हाथ है, अपन तो ये सोचते हैं कि हम कितने लोगों के जीवन जीने में हमारा हाथ है, बस इसको थोड़ा परिवर्तित करना है, मेरे अपने जीवन जीने में कितने लोगों का हाथ है, ऐसा विचार आ जावे तो भीतर मन कृतज्ञता से भर जाएगा। और आखिरी बात, दूसरे की गलतियां ना देख करके अपनी गलती देखने का स्वभाव धीरे धीरे बनाएं तो अहंकार कम हो जाए। To error is the human, to confess is the divine. मनुष्य गलतियां करेगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को वो स्वीकार कर लेवे तो वो देवता के बराबर हो जाएगा। ये चौथी बात अगर अपने मन में ध्यान में बनी रहे, गलती हो भी जावे अपन से तो विनय पूर्वक झुक करके तुरंत के तुरंत, देर नहीं करना, सुबह की शाम हो गई तो भी समझो कि देर हो गई, बस तुरंत ध्यान में आ जावे और वहीं के वहीं उस चीज को अपन स्वीकार कर लें पूरी विनय से, अपने को असाधारण और विशिष्ट मान के नहीं भैया, अपने को बहुत साधारण और सामान्य मान करके, तभी ये संभव है, हमारे भीतर विनय आ सकती है। वाणी की विनय मधुर वचन, मन की विनय श्रेष्ठ विचार, शरीर की विनय अच्छे कार्य। बस सब समझते हैं अच्छा कार्य कौन सा है, मीठा बोलना क्या है और श्रेष्ठ विचार क्या है। ये अगर हमारे अंदर बढ़ते चले जाएं तब तो हम आसानी से उस मार्दव धर्म को या कि मृदुता और कोमलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक आखिरी छोटा सा उदाहरण, और अपना समय एकदम सही समय पर हो गया, कल अपन ने जितना गड़बड़ किया था समय का सब सुधर गया, वो दुरुस्त हो गया। आज एकाध दिन 10 मिनट पहले छोड़ देंगे तो वो पुराना जो 10 मिनट ज्यादा बोला था वो कवर हो जाएगा एकदम, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, ऐसा ऐसे करने का प्रयत्न करना चाहिए, तब उसमें बहुत आनंद आता है। क्या हुआ, एक राजा साहब जा रहे थे, उनकी सवारी जा रही थी और पेड़ के बहुत पेड़ लगे हुए थे, आम के पेड़ थे बढ़िया बढ़िया, उनके नीचे से उनकी सवारी उतर निकल रही थी। उतने में क्या हुआ कि एक पत्थर आकर के उनके सिर से टकराया, अब चोट तो लग गई। राजा साहब कुछ कहें इसके पहले ही उनके जो सैनिक वैनिक थे दौड़ पड़े, कहाँ से आया पत्थर, किसने फेंका पत्थर, और ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा उनको, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक छोटा सा बच्चा था, वो चुपचाप गुमसुम खड़ा था, उसको भी उसने भी देखा कि गलती तो हो गई, राजा साहब के चिर पर पड़ा है और उसकी माँ भी बाजू में खड़ी थी, वो तो रोने रोने को हो गई कि अब गया गया मेरा बेटा, अब क्या करें, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। गलती तो हो गई लेकिन विनय को नहीं छोड़ा, विनयवान का ज्ञान और आचरण श्रेष्ठ है, विनयहीन का ज्ञान और आचरण मिथ्या है। जो अपने गुरु के प्रति विनम्र नहीं है उसका सारा कुछ आचरण और उसका सारा चारित्र ऊसर भूमि में बोए हुए बीज के समान है, ऐसा लिखा हुआ है। उनकी विनय बनी रही, हाथ जोड़ लिए कि मेरे बेटे की गलती है, उसने पत्थर फेंका था, राजा के पास ले चलो, ले गए राजा के पास। राजा ने कहा बेटे तुमने पत्थर फेंका था। हाँ फेंका था। क्या मुझे मारने के लिए फेंका था? ना, आपके मारने के लिए नहीं फेंका था। तो क्यों फेंका था मैं बताऊं? पेड़ में आम लगे हुए हैं और पके हुए आम मुझे तोड़ना थे तो मैंने पत्थर फेंका था, तो वो आम तो नहीं टूटा, पत्थर आपको लग गया, जो सजा देना हो दे दें। अब तो राजा साहब को सोच में पड़ गए राजा साहब, और उन्होंने कुछ नहीं सोचा और अपने गले का हीरे का हार उतार करके, जाओ तुम्हारे लिए यही है। अरे दंड मिलना चाहिए था, उनकी माँ बोली कि इसे तो दंड मिलना चाहिए था, सजा मिलनी थी, नहीं इसे पुरस्कृत करता हूं। क्यों? जब एक वृक्ष पत्थर फेंकने पर भी और मीठे फल देता है तो इसने मेरे ऊपर पत्थर फेंका तो मैं इसे दंड कैसे दे सकता हूं, मैं तो मीठे फल ही इसे दूं। ये जो है ये हमारे भीतर की मृदुता और कोमलता है, क्या ऐसी अपने भीतर नहीं आ सकती? एक आध मौके पर सही, दिन भर में कोई अपने को चोट पहुंचाए और अपन उसके प्रति फिर भी अपना मन खट्टा ना करें, एक आध बार दिन भर में, ऐसा इसका आनंद जरूर से लेना चाहिए। यही हमारा अपना स्वभाव है, ऐसे ही हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज की।